अध्ययन लेख 33। इस लेख का अध्ययन 9 से 15 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा। विषय, दानियल की मिसाल से सीखिए। ये लेख दानियल 9 के 23 पर आधारित है, जहां लिखा है, तू परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। गीत 73, दे निडरता का वरदान। एक झलक, आज यहोवा के नौजवान सेवकों के सामने कई बार ऐसे हालात आते हैं जिनमें हिम्मत से काम लेना और यहोवा के वफादार रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। शायद उनकी क्लास के बच्चे उनका मजाक उड़ाएं, क्योंकि वो मानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, या शायद दूसरे बच्चे उन्हें ये महसूस कराने की कोशिश करें कि वो बेवकूफ हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं और सही गलत के बारे में उसके स्तरों के हिसाब से जीते हैं। लेकिन जैसे हम इस लेख में देखेंगे, जो दानियल की तरह हिम्मत से काम लेते हैं और वफादारी से यहोवा की सेवा करते हैं, वो ही सच में बुद्धिमान है। पैराग्राफ एक, सवाल, बेबीलोन के लोगों को दानियल क्यों अच्छा लगा? जब भविष्यवक्ता दानियल नौजवान ही था, तब उसे बंदी बना लिया गया। उसे यरूशलम में उसके घर से बहुत दूर बेबीलोन ले जाया गया। जब बेबीलोन के अधिकारियों ने उसका बाहरी रूप देखा, जब उन्होंने देखा कि उसमें कोई खामी नहीं है, वो दिखने में सुंदर है और एक ऊंचे खानदान से है, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो उसे ऐसी शिक्षा देंगे कि वो आगे चलकर राजमहल में सेवा कर सके। पैराग्राफ दो, सवाल, यहोवा को दानियल कैसा लगता था? समझाइए। यहोवा भी दानियल से प्यार करता था, पर इसलिए नहीं कि वो दिखने में सुंदर था या वो एक ऊंचे ओहदे पर था। यहोवा ने देखा कि वो अंदर से कैसा इंसान है, उसका दिल कैसा है। उसने दानियल के बारे में कहा कि वो नूह और अय्यूब के जैसा नेक है। नूह और अय्यूब ने तो काफी लंबे समय तक वफादारी से यहोवा की सेवा की थी और उसकी नजर में एक अच्छा नाम कमाया था। पर क्या आप जानते हैं, जब यहोवा ने दानियल के बारे में ये बात कही, तब वो शायद 19-20 साल का ही था। यहेजकेल 14:14 में लिखा है, सारे जहां का मालिक यहोवा ऐलान करता है, अगर उस देश में नूह, दानियल और अय्यूब भी हों, तो ये तीनों आदमी अपनी नेकी की वजह से सिर्फ अपनी जान बचा पाएंगे। दानियल ने एक लंबी जिंदगी जी और उसकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन यहोवा ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उससे प्यार करता रहा। पैराग्राफ तीन, सवाल, इस लेख में हम किस बारे में चर्चा करेंगे? इस लेख में हम दानियल के ऐसे दो गुणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से वो यहोवा को बहुत पसंद था, उसके लिए अनमोल था। सबसे पहले हम उन गुणों के बारे में थोड़ा बात करेंगे और देखेंगे कि किन हालात में दानियल ने वो गुण जाहिर किए। फिर हम देखेंगे कि दानियल किस तरह वो गुण बढ़ा पाया। आखिर में हम जानेंगे कि हम दानियल की तरह कैसे बन सकते हैं और वो गुण कैसे जाहिर कर सकते हैं। ये लेख खासतौर से नौजवानों को ध्यान में रखकर लिखा गया है, लेकिन हम सब दानियल के उदाहरण से सीख सकते हैं। दानियल की तरह हिम्मत वाले बनिए। पैराग्राफ चार, सवाल, दानियल ने किस तरह हिम्मत से काम लिया? एक उदाहरण दीजिए। जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, कई बार उन्हें भी डर लगता है, लेकिन इस वजह से वो सही काम करने से पीछे नहीं हटते। दानियल बहुत हिम्मत वाला था। जरा ऐसी दो घटनाओं पर गौर कीजिए जब उसने हिम्मत से काम लिया। पहली घटना शायद उस वक्त हुई थी जब बेबीलोन के हाथों यरूशलम का नाश हुए करीब 2 साल हो गए थे। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सपने में एक विशाल मूरत देखी, जिस वजह से वो बहुत बेचैन हो गया। उसने अपने ज्ञानियों से कहा कि वो उसका सपना और उसका मतलब बताए, और अगर वो नहीं बता पाए तो उन्हें जान से मार डाला जाएगा। दानियल की जान को भी खतरा था, उसे फौरन कदम उठाना था, क्योंकि बहुत से लोगों की जान दांव पर लगी थी। वो राजा के सामने गया और उससे गुजारिश की कि अगर राजा उसे थोड़ा वक्त दे तो वो उसे सपने का मतलब बता सकता है। दानियल 2:16। इससे पता चलता है कि दानियल कितना हिम्मत वाला था और उसे परमेश्वर पर कितना विश्वास था। हम ये क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दानियल ने पहले कभी किसी सपने का मतलब बताया था। दानियल के 3 दोस्त थे जिनके बेबीलोन की भाषा में नाम थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उसने उनसे ये प्रार्थना करने के लिए कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर दया करे और इस रहस्य का खुलासा करे। दानियल 2:18। यहोवा ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली। परमेश्वर की मदद से दानियल नबूकदनेस्सर के सपने का मतलब बता पाया। इससे दानियल और उसके दोस्तों की जान बच गई। पैराग्राफ 5। सवाल, दानियल को किन हालात में एक बार फिर हिम्मत से काम लेना पड़ा? जब दानियल ने राजा को विशाल मूरत के सपने का मतलब बताया था, उसके कुछ समय बाद एक और ऐसी घटना हुई जब उसे हिम्मत से काम लेना था। राजा नबूकदनेस्सर ने एक और डरावना सपना देखा। इस बार उसने सपने में एक ऊंचा और विशाल पेड़ देखा। दानियल ने हिम्मत से काम लिया और राजा को उसके सपने का मतलब बताया। उसने राजा से कहा कि वो पागल हो जाएगा और कुछ वक्त के लिए राज नहीं कर पाएगा। राजा सोच सकता था कि दानियल उससे राजद्रोह कर रहा है और उसे मौत की सजा सुना सकता था। फिर भी दानियल ने हिम्मत से काम लिया और उसे ये संदेश सुनाया। पैराग्राफ 6। सवाल, दानियल शायद किस वजह से हिम्मत से काम ले पाया? दानियल ने अपनी पूरी जिंदगी हिम्मत से काम लिया। वो ये कैसे कर पाया? जब वो छोटा था तो जरूर उसने अपने माता पिता की अच्छी मिसाल से सीखा होगा। यहोवा ने इसराइली माता पिताओं को जो हिदायत दी थी, उसके माता पिता ने वो मानी होंगी और दानियल को परमेश्वर के कानून के बारे में सिखाया होगा। इसलिए दानियल ना सिर्फ कानून की मोटी मोटी बातें जानता था, जैसे 10 आज्ञाएं, बल्कि छोटी छोटी बातें भी जानता था, जैसे इसराइली क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। दानियल ये भी जानता था कि बीते दिनों में परमेश्वर के लोगों के साथ क्या क्या हुआ था और जब उन्होंने परमेश्वर के स्तर नहीं माने तो उन्हें क्या अंजाम भुगतने पड़े। और खुद दानियल की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे उसे यकीन हो गया कि यहोवा और उसके स्वर्गदूत उसके साथ हैं। फुटनोट, दानियल ने शायद 3 वजहों से बेबीलोन के लोगों का खाना खाने से इंकार कर दिया था। 1, वो शायद ऐसे जानवरों का मांस था जिन्हें मूसा के कानून में खाने से मना किया गया था। 2, शायद उन जानवरों का खून अच्छी तरह बहाया नहीं गया था। 3, उसे खाना झूठे देवताओं की उपासना करने के बराबर माना जा सकता था, क्योंकि वहां अक्सर जानवरों को पहले झूठे देवी देवताओं के सामने बलिदान किया जाता था। फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ 7। सवाल, दानियल और किस वजह से हिम्मत वाला बन पाया? दानियल परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की लिखी बातों का भी अध्ययन करता था, जैसे यिर्मयाह की भविष्यवाणियों का। इस वजह से वो आगे चलकर समझ गया कि जो यहूदी काफी लंबे समय से बेबीलोन में बंदी हैं, वो बहुत जल्द अपने देश लौटने वाले हैं। जब दानियल ने देखा कि बाइबल की भविष्यवाणियां किस तरह पूरी हो रही हैं, तो यहोवा पर उसका भरोसा और भी बढ़ गया होगा। और जिन लोगों को परमेश्वर पर भरोसा होता है, उनमें कमाल की हिम्मत आ जाती है। सबसे बढ़कर दानियल बार बार परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर के सामने अपने पाप कबूल करता था और अपने दिल की हर बात बताता था। वो परमेश्वर से मदद भी मांगता था। दानियल भी हमारे जैसा ही इंसान था। वो जन्म से हिम्मत वाला नहीं था। उसने शास्त्र का अध्ययन किया, प्रार्थना की और यहोवा पर भरोसा रखा। इस वजह से वो हिम्मत वाला बन पाया। पैराग्राफ 7 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि दानियल राजा नबूकदनेस्सर से बात कर रहा है, जो अपने सिंहासन पर बैठा है। दूसरे दरबारी बड़ी हैरानी से उसकी बातें सुन रहे हैं। चित्र शीर्षक, दानियल ने शास्त्र का अध्ययन किया, प्रार्थना की और यहोवा पर भरोसा रखा। इस वजह से वो हिम्मत से काम ले पाया। पैराग्राफ 8। सवाल, हम हिम्मत वाले कैसे बन सकते हैं? तो हम कैसे हिम्मत वाले बन सकते हैं? हमारे माता पिता शायद हमसे कहें कि हमें हिम्मत से काम लेना है, लेकिन हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो वो हमें विरासत में दे सकते हैं। हमें खुद हिम्मत वाले बनना होगा। देखा जाए तो हिम्मत वाले बनना कोई नया हुनर सीखने जैसा है। कोई हुनर सीखने का एक तरीका है कि हम सिखाने वाले को ध्यान से देखें और फिर जैसा वो करता है वैसा ही करने की कोशिश करें। उसी तरह हिम्मत वाले बनने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को ध्यान से देखें कि वो कैसे हिम्मत से काम लेते हैं और फिर उनकी तरह बनने की कोशिश करें। तो हमने दानियल से क्या सीखा? उसकी तरह हमें परमेश्वर के वचन में लिखी बातें अच्छी तरह समझनी है। हमें यहोवा से दिल खोलकर और लगातार प्रार्थना करनी है और इस तरह उसके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करना है। और हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, पूरा यकीन रखना है कि वो हमेशा हमारा साथ देगा। फिर जब कभी हमारे विश्वास की परख होगी तब हम हिम्मत से काम ले पाएंगे। पैराग्राफ 9। सवाल, हिम्मत से काम लेने से कौन से फायदे होते हैं? जब हम हिम्मत से काम लेते हैं तो इससे बहुत से फायदे होते हैं। जरा बेन के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। वो जर्मनी के एक स्कूल में पढ़ता था जहां सभी बच्चे विकासवाद की शिक्षा मानते थे। उन्हें लगता था कि बाइबल में दुनिया की रचना के बारे में जो लिखा है वो सच नहीं हो सकता। एक बार बेन को पूरी क्लास के सामने ये बताने का मौका मिला कि वो क्यों ये मानता है कि पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों को किसी ने बनाया है। उसने हिम्मत से काम लिया और सबको इस बारे में बताया। इसका नतीजा क्या हुआ? बेन कहता है, मेरे टीचर ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी और मैंने जिस लेख के आधार पर अपनी बात कही थी उन्होंने उसकी कई कॉपियां बनाई और क्लास के सभी बच्चों को एक एक दी। बेन की क्लास के बच्चों का कैसा रवैया था? बेन कहता है, उनमें से कई बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उन्होंने मेरी तारीफ की। बेन के अनुभव से पता चलता है कि जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं उनका अक्सर लोग आदर करते हैं। उनकी वजह से अच्छे दिल के लोग शायद यहोवा के बारे में भी जानना चाहें, तो क्यों ना हम सब हिम्मत वाले बनने की कोशिश करें। दानियल की तरह हमेशा वफादार रहिए। पैराग्राफ 10, सवाल, समझाइए कि वफादारी का मतलब क्या है। बाइबल में जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद वफादारी या अटल प्यार किया गया है वो अक्सर ये बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर को अपने सेवकों से कितना गहरा लगाव या प्यार है। वही शब्द तब भी इस्तेमाल हुआ है जब परमेश्वर के सेवकों के आपसी प्यार की बात की गई है। जैसे जैसे वक्त बीतता है किसी के वफादार रहने का हमारा इरादा और भी पक्का हो सकता है। आइए गौर करें कि दानियल के मामले में ये बात कैसे सच साबित हुई। पैराग्राफ 11, सवाल, जब दानियल बुजुर्ग हो गया था तब उसकी वफादारी की परख कैसे हुई? दानियल की जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ जब उसके लिए यहोवा का वफादार रहना मुश्किल था, लेकिन जब वो 90 से भी ऊपर था तब उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। उस वक्त तक मादी और फारस के लोगों ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया था और वहां राजा दारा हुकूमत करने लगा था। उसके राज दरबारी दानियल को पसंद नहीं करते थे और ना ही उसके परमेश्वर की कोई इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने दानियल को फंसाने और जान से मार डालने की साजिश रची। उन्होंने राजा से एक फरमान जारी करवाया जिससे इस बात की परख होती कि दानियल राजा का वफादार रहेगा या अपने परमेश्वर का। अगर दानियल 30 दिन के लिए यहोवा से प्रार्थना करना छोड़ देता तो यह आसानी से साबित हो जाता कि वो राजा का वफादार है और किसी की नजरों में नहीं आता। लेकिन दानियल ने समझौता नहीं किया, वो प्रार्थना करता रहा। उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में यहोवा का वफादार रहेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे शेरों की मांद में फेंक दिया गया, लेकिन यहोवा दानियल की वफादारी से खुश था इसलिए उसने उसे शेरों के मुंह से बचा लिया। हम दानियल की तरह हर हाल में यहोवा के वफादार कैसे रह सकते हैं? पैराग्राफ 11 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि भविष्यवक्ता दानियल शेरों की मांद में है और वो आसमान की तरफ देख रहा है। पास ही में थोड़ा ऊपर एक स्वर्गदूत है जो शेरों से उसकी हिफाजत कर रहा है। बाहर दी तस्वीर का चित्र शीर्षक, यहोवा दानियल की वफादारी से खुश था इसलिए उसने एक स्वर्गदूत को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया। पैराग्राफ 12, सवाल, दानियल क्यों हर हाल में यहोवा का वफादार रह पाया? जैसे हमने देखा, हम तभी किसी के वफादार रह पाते हैं जब हमें उससे बहुत प्यार होता है। दानियल भी इसलिए हर हाल में यहोवा का वफादार रह पाया क्योंकि वो अपने पिता यहोवा से बहुत प्यार करता था। वो ये प्यार कैसे बढ़ा पाया? वो जरूर इस बारे में सोचता होगा कि यहोवा कैसा परमेश्वर है, उसमें कौन कौन से गुण हैं और उसने ये गुण कैसे जाहिर किए। दानियल ये भी सोचता था कि यहोवा ने उसके और अपने लोगों के लिए कितना कुछ किया है और वो इसके लिए बहुत एहसानमंद था। पैराग्राफ 13, सवाल क, किन हालात में हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए वफादार रहना मुश्किल हो जाता है? एक उदाहरण दीजिए। सवाल ख, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या यहोवा के साक्षी समलैंगिक लोगों का साथ देते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? दानियल की तरह हमारे नौजवान भाई बहनों को भी आज ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो यहोवा और उसके स्तरों की जरा भी कदर नहीं करते। शायद वो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद ना करें जिनका धर्म या जिनकी सोच उनसे अलग हो। और कुछ लोग तो हमारे नौजवानों को शायद इतना परेशान करें कि उनके लिए यहोवा का वफादार रहना मुश्किल हो जाए। जरा ध्यान दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रहम नाम के एक नौजवान के साथ क्या हुआ। जब वो स्कूल में था तब उसे एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। एक बार उसकी टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से पूछा कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि वो समलैंगिक है तो आप क्या करेंगे। फिर टीचर ने कहा कि जिन बच्चों को लगता है समलैंगिक होने में कोई बुराई नहीं है तो वो एक तरफ खड़े हो जाएं, और जिन्हें लगता है कि ये गलत है वो दूसरी तरफ। ग्रहम कहता है, मुझे और एक दूसरे साक्षी को छोड़ क्लास के सभी बच्चे एक तरफ जाकर खड़े हो गए। उन्हें लगता था कि समलैंगिक होने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद जो हुआ उससे ग्रहम की वफादारी की और भी परख हुई। वो बताता है, करीब एक घंटे तक वो टीचर और दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते रहे और हमारी बेइज्जती करते रहे। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो मानता हूं उस बारे में शांति से उन्हें समझाऊं, पर वो मेरी सुन ही नहीं रहे थे। उस वक्त ग्रहम को कैसा लगा हो? वो बताता है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा। मुझे बुरा तो लगा, पर मैं इस बात से बहुत खुश था कि मैं यहोवा का वफादार रह पाया और मैं जो मानता हूं उस बारे में उन्हें बता पाया। पैराग्राफ 13 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक तरफ दो नौजवान साक्षी हैं और दूसरी तरफ उनकी क्लास के बच्चे और टीचर। वो बड़े गुस्से में हैं, पर वो दोनों शांति से उन्हें बता रहे हैं कि वो क्या मानते हैं। चित्र शीर्षक, दानियल की तरह अगर आप भी यहोवा से प्यार करें तो आप हर हाल में उसके वफादार रह पाएंगे। पैराग्राफ 14, सवाल, हर हाल में यहोवा के वफादार रहने का एक तरीका क्या है? आप भी हर हाल में यहोवा के वफादार रह सकते हैं। वो कैसे? अगर आप दानियल की तरह उसके लिए अपना प्यार बढ़ाएं, और ऐसा करने का एक तरीका है उसके गुणों के बारे में जानना। इसके लिए हम उसकी बनाई चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। जितना हम ऐसा करेंगे उतना ही हम उससे प्यार करने लगेंगे और उसका आदर करने लगेंगे। इसके लिए आप चाहें तो क्या इसे रचा गया था श्रृंखला में दिए छोटे छोटे लेख पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप जीवन की शुरुआत 5 सवाल जवाब पाना जरूरी ब्रोशर पढ़ सकते हैं।
ध्यान दीजिए कि इस तरह के प्रकाशनों के बारे में डेनमार्क में रहने वाली हमारी एक नौजवान बहन एस्टर क्या कहती है।
इनमें तर्क करके बातें इतनी बढ़िया तरीके से समझाई गई हैं कि क्या कहूं। इन प्रकाशनों में ये नहीं बताया गया कि आपको क्या मानना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इनमें बस सही सही जानकारी दी गई है जिससे आप खुद तय कर सकते हैं कि आप क्या मानेंगे। बहन जिसके बारे में पहले बताया गया था कहता है, ये जानकारी पढ़कर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। इससे मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर ने ही हर एक जीव को बनाया है। इन प्रकाशनों में दी जानकारी पढ़कर आप भी जरूर बाइबल में लिखी इस बात से सहमत होंगे। हे यहोवा हमारे परमेश्वर, तू महिमा आदर और शक्ति पाने के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सारी चीजें रची हैं। प्रकाशित वाक्य 4:11। फुटनोट, यहोवा से और भी ज्यादा प्यार करने के लिए आप यहोवा के करीब आओ किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें यहोवा के गुणों और उसके स्वभाव के बारे में खुलकर समझाया गया है। फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ 15, सवाल, यहोवा से अपनी दोस्ती पक्की करने का एक और तरीका क्या है? यहोवा के लिए अपना प्यार बढ़ाने का एक और तरीका है उसके बेटे यीशु के जीवन में हुई घटनाओं का अध्ययन करना। जर्मनी में रहने वाली एक नौजवान बहन समीरा ने ऐसा ही किया। वो कहती है, यीशु के बारे में जानने से मैं यहोवा को और अच्छी तरह जान पाई। जब वो छोटी थी तो उसे ये समझना मुश्किल लगता था कि यहोवा उसका दोस्त हो सकता है और वो उससे प्यार कर सकता है, लेकिन जब यीशु की बात आती थी तो वो समझ जाती थी कि उसे कैसा महसूस होता होगा। उसने ये भी कहा, यीशु सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जितना ज्यादा उसने यीशु के बारे में जाना उतना ही वो यहोवा को और अच्छे से जान पाई और उससे प्यार करने लगी। वो बताती है, धीरे धीरे मैं समझने लगी कि यीशु सब कुछ अपने पिता की तरह करता है, वो दोनों एक जैसे हैं। मैं समझ पाई कि ये एक वजह थी कि क्यों यहोवा ने यीशु को धरती पर भेजा, ताकि उसके जरिए सब लोग यहोवा को और अच्छी तरह जान पाए। यूहन्ना 14:9। अगर आप यहोवा के साथ अपनी दोस्ती और पक्की करना चाहते हैं तो क्यों ना आपसे जितना हो सके उतना यीशु के बारे में जानने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यहोवा के लिए आपका प्यार बढ़ेगा और आप हमेशा उसके वफादार रहना चाहेंगे। पैराग्राफ 16, सवाल, वफादार होने से हमें कौन से फायदे होते हैं? जो लोग दूसरों के वफादार रहते हैं उनके अक्सर अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो हमेशा उनका साथ देते हैं, और जो लोग यहोवा के वफादार रहते हैं उन्हें मन की शांति और सुकून मिलता है। वो इसलिए कि यहोवा ने वादा किया है, जो उसके वफादार रहते हैं वो भी उनका वफादार रहेगा। भजन 18 के 25 में लिखा है, जो वफादार रहता है उसके साथ तू वफादारी निभाता है, जो सीधा है उसके साथ तू सीधाई से पेश आता है। और मीका 6:8 में लिखा है, हे इंसान, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है। यहोवा इसे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है कि तू न्याय करे, वफादारी से लिपटा रहे और मर्यादा में रहकर अपने परमेश्वर के साथ चले। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि पूरे जहां का बनाने वाला हम इंसानों से दोस्ती करना चाहता है, और जब उसके साथ हमारी पक्की दोस्ती होती है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी विरोधी, यहां तक कि मौत भी उसे तोड़ नहीं सकती। तो क्यों ना हम सब दानियल की तरह बने और हमेशा यहोवा के वफादार रहें। दानियल से सीखते रहिए। पैराग्राफ 17 और 18। सवाल, दानियल से हम और क्या सीख सकते हैं? इस लेख में हमने दानियल के बस दो गुणों पर चर्चा की, लेकिन हम उससे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे यहोवा ने दानियल को कई दर्शन और सपने दिखाए, और उसने दानियल को भविष्य में होने वाली बातों का मतलब समझाने की भी काबिलियत दी। उनमें से कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और दूसरी कुछ भविष्यवाणियों में आगे चलकर होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनका धरती पर रहने वाले हर इंसान को सामना करना होगा। अगले लेख में हम दानियल की लिखी दो भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। उन्हें समझने से बूढ़े जवान सभी को फायदा होगा और हम सब अच्छे फैसले ले पाएंगे। उन भविष्यवाणियों का अध्ययन करने से हम और भी हिम्मत से काम ले पाएंगे और वफादार रहने का हमारा इरादा और भी पक्का हो जाएगा। इससे हम उन घटनाओं के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे जो बहुत जल्द होने वाली हैं। क्या आपको याद है यहोवा दानियल से क्यों प्यार करता था? दानियल ने किन हालात में हिम्मत से काम लिया? दानियल की तरह यहोवा के वफादार रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गीत 119, क्या ईमान हम में है खरा। लेख समाप्त।